नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रशांत कुमार। मुख्य समाचार। भारत और कनाडा ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की दोबारा पुष्टि की। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान शांति वार्ता में पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति इस्लामाबाद के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। दक्षिणी लेबनान में इसराइली हवाई हमलों में करीब 31 लोगों की मौत। जापान की संसद ने विदेशी खतरों के जवाब में सूचना जुटाने को केंद्रीकृत करने के लिए राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दी। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल ने कनाडा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
इसके बाद दोनों देशों के मंत्रियों की सह अध्यक्षता में कनाडा भारत निवेश गोल में सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में पेंशन फंड और बैंकों सहित कनाडा के प्रमुख वित्तीय निवेशकों के साथ साथ दोनों देशों के वरिष्ठ सरकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री गोयल ने हितधारकों को विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ साझेदारी करने के लिए आमंत्रित किया। दोनों देशों के सतत विकास और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय बाजारों में सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कनाडा में भारतीय समुदाय की शक्ति और भारत कनाडा व्यापार गलियारे को मजबूत करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। मुख्य वार्ताकार के नेतृत्व में अमेरिका का एक दल अगले महीने की पहली से चौथी तारीख तक भारत का दौरा करेगा। इस दौरे का उद्देश्य व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतर्गत बाजार पहुंच, गैर शुल्क उपायों और अन्य कई क्षेत्रों पर चल रही वार्ताओं को आगे बढ़ाना है। एक रिपोर्ट।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि यह दौरा भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते के विवरण को अंतिम रूप देने के लिए प्रस्तावित है। इससे पहले भारत और अमेरिका ने इस वर्ष फरवरी में एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते के ढांचे पर सहमति व्यक्त की थी। ये ढांचा व्यापक भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते की वार्ताओं के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। भारतीय पक्ष ने पिछले महीने की 20 से 23 तारीख तक वॉशिंगटन का दौरा किया था, जहां उन्होंने अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ बैठकें की थी। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इंकार करने पर रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सीनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में इस्लामाबाद की भूमिका बेहद समस्याग्रस्त है। उन्होंने इसराइल के प्रति इस्लामाबाद के लंबे समय से चले आ रहे विरोध और उनकी निष्पक्षता पर गंभीर संदेह व्यक्त किया है। सीनेटर ने दावा किया कि ये निर्विवाद है कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे पर रखे जा रहे हैं। उन्होंने इसराइल के खिलाफ शीर्ष पाकिस्तानी अधिकारियों की पिछली टिप्पणियों को भी चिंताजनक बताया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनैनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। परिषद को संबोधित करते हुए भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी स्थापना के बाद से लगातार आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद और भारत विरोधी गतिविधियों को पनाह दी है और उनका समर्थन किया है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम भुगतने होंगे।
पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इसराइल के हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में 31 लोग मारे गए और 40 अन्य घायल हो गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसराइल और हिजबुल्ला के बीच बढ़ते सीमावर्ती तनाव के बीच कल कई कस्बों और गांवों को निशाना बनाकर हमले किए गए। अधिकारियों ने बताया कि सबसे घातक हमला दक्षिणी शहर टायर के पास बुर्ज अल शिमाली इलाके में हुआ, जहां 14 लोगों की जान चली गई और 16 अन्य घायल हो गए। ये हमले 16 अप्रैल को अमेरिका की मध्यस्थता से इजराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष रोकने के लिए कराए गए युद्ध विराम समझौते के बाद हुए हैं। जापानी संसद ने आज विदेशी खतरों से निपटने के लिए सूचना जुटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने हेतु एक राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दे दी। परिषद की स्थापना जापानी प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के शासन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से सबसे जटिल सुरक्षा वातावरण के जवाब में खुफिया और जासूसी विरोधी क्षमताओं को मजबूत करने का संकल्प लिया है। हालांकि नए कानून में संसद द्वारा खुफिया गतिविधियों की निगरानी के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं है, जिससे लोकतांत्रिक निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि यह कानून जन अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। परिषद की अध्यक्षता सनाए तकाइची करेंगी और इसमें 9 अन्य कैबिनेट मंत्री सदस्य होंगे। नए कानून के तहत जापान के खुफिया तंत्र को केंद्रीकृत किया जाएगा। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि ये घटनाएं पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने के दर्द में बदल गया है। नेपाल ने विदेशों में रहने वाले नेपाली नागरिकों को ऑनलाइन कॉन्सुलर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मोफा मित्र नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस ऐप के जरिए नेपाली नागरिक और उनके परिवार कॉन्सुलर संबंधी शिकायतें और समस्याएं ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। म्यूनिक में ISSF राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने कई कीर्तिमान अपने नाम किए। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ईशा ने 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने किम येजी के 42 हिट के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया।
Nonetheless, a new world record, a new junior world record has been set. And there we go, Isha Singh, delighted. She's a gold medalist here in Munich. History in front of us.
फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया के शीर्ष खिलाड़ी जियन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। 38 हिट के साथ डोरीन वेनेकैम्प दूसरे और 31 के साथ मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रही। मैच के बाद ईशा ने कहा कि मैंने अपने मैच पर ध्यान दिया। मैच के बाद ईशा ने कहा कि उन्होंने लगातार अपने प्रशिक्षण पर ध्यान दिया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और कनाडा ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की दोबारा पुष्टि की। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान शांति वार्ता में पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति इस्लामाबाद के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। जापान की संसद ने विदेशी खतरों के जवाब में सूचना जुटाने को केंद्रीकृत करने के लिए राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।